तृतीय अंक। यह अंक उर्वशी रूपी काव्य वृक्ष का तना है। इसमें एक ओर जहाँ काव्यत्व की निर्मल लहरियाँ हैं, वहाँ दूसरी ओर दर्शन की गहन गंभीरता भी है। अंक का प्रारंभ गंधमादन पर्वत पर बैठे हुए पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम प्रसंग से होता है। उर्वशी अपने पुरावृत्त को दोहराती हुई कहती है कि जब मैं तुम्हारा प्रथम दर्शन करके सुरपुर लौटी तो अहर्निश तुम्हारा दिव्य रूप मेरी आंखों पर छाया रहता था। समय काटते नहीं कटता था, ऐसा लगता था जैसे किसी विशाल अजगर ने इसे अपने आक्रोश में दबा लिया हो। दूसरी ओर पुरुरवा की भी यही दशा थी। वह कहने लगा कि तुम्हारे जाने पर मुझे ऐसा लगा जैसे छूट गए हों प्राण उन्हीं उज्ज्वल मेघों के वन में। कई बार इच्छा हुई कि इंद्रदेव से तुम्हारी भीख मांग लूँ, मगर फिर मन ने टोका, क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या? और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से? लेकिन उसे अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए हृदय बार बार कहता था कि तुम भूतल पर जरूर आओगी। उर्वशी ने कहा कि मैं चली तो आई, मगर स्वयं चली आने में मुझे उस स्वाद की उपलब्धि नहीं हुई जो उन नारियों को होती है जिन्हें प्रेम में उद्वेलित विक्रमी पुरुष बलशाली रण से लाते जीत या कि बल सहित हरण करते हैं। पुरुरवा इन दोनों कर्मों की भर्त्सना करता है और प्रेम की आंतरिक गहराई तक पहुँचने की इच्छा प्रकट करता है। उर्वशी यह सुनकर स्तब्ध हो जाती है, क्योंकि देवों की शीतलता को छोड़कर वह इस धरा पर आई थी, वहाँ पुरु के चित्त में भी उसी का अंश दृष्टिगोचर होने लगा। भयाक्रांत होकर उर्वशी कहती है, तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, मन से किंतु विषण दूर तुम कहाँ चले जाते हो? पुरुरवा नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, परंतु इसके हृदय में इस सूक्ष्म भावना का उदय होता है कि रूप का आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। शारीरिक सौंदर्य से परे हटकर जब मैं तुम्हें एकायन मन से देखता हूँ तो मेरे भाव व्यष्टि से समष्टि की ओर चल पड़ते हैं और त्रिलोक में मुझे केवल तुम्हारे ही सौंदर्य के दर्शन होते हैं। उस समय यह सिंह पुष्प के समक्ष शक्ति के रहते हुए भी निरुपाय होकर गिर जाता है, क्योंकि तुम्हें मत समझना कि प्रेम के इस व्यापकता के कारण मैं तुम्हें छोड़कर आकाश में विचरण करूँगा, क्योंकि मैं रमणशील प्राणी हूँ। देवत्व का संतोष एवं शीतलता मेरे लिए दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। पुरु के चित्त में देवत्व की चाह देखकर उर्वशी और अधिक बेचैन होती है, क्योंकि देवों की जिस शीतलता को छोड़कर वह नर के उत्तप्त रुधिर को अपना समर्पण करने आई थी, यदि वह भी देव लालसा में डूब गया तो जगती पर मेरा आना व्यर्थ हुआ। अतः उर्वशी पुरुरवा के चित्त में इस धारणा को उपस्थापन कराना चाहती है कि तुम में मनुजत्व और देवत्व दोनों ही निवास करते हैं। यह तो नर ही है एक साथ जो शीतल और ज्वलित भी है, मंदिर में साधक व्रति पुष्प वन में कंदर प्रललित भी है। इस पर भी यदि तुम अपनी मधुर कांति में मुझे मोहित कर लोगे तो फिर तुम मनुज नहीं देवता हो जाओगे। पुरुरवा बुद्धिवादी बनकर उर्वशी के इस कथन पर विचार करना चाहता है। उर्वशी रक्त के सामने बुद्धि की हेयता सिद्ध करती है। रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती और शोणित अनुभव करता है। निरी बुद्धि की निर्मितियाँ निष्प्राण हुआ करती हैं, चित्त और प्रतिभा इनमें जो जीवन लहराता है वह सूझों से नहीं पत्र पाषाणों से आया है, कलाकार के अंतर के हिलकोरे हुए रुधिर से। अतः इस वैराग्यवादी भावना को छोड़कर रक्त की भाषा पढ़ो और इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करो। पुरुरवा इस बात को स्वीकार करता है कि रक्त बुद्धि से अधिक बली है, लेकिन रुधिर एवं त्वचा का आनंद ही सब कुछ नहीं है। हमें इसमें भी ऊपर उठकर ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ न उठते प्रश्न कोई शंका ही जगती है। अतः देह धर्म से ऊपर उठकर हमें अंतरात्मा तक उठना चाहिए, मगर यह पथ बड़ा दुस्साध्य है, क्योंकि पहले तो मधुसिक्त भ्रमर के पंख नहीं खुलते हैं और खुले भी तो उड़ान आधी ही रह जाती है, नीचे उसे खींच लेता है आकर्षण मधुबन का। अतः यह प्रेम ही नर की ऊर्ध्व प्रगति में बाधक है। उर्वशी से यह नहीं देखा जाता, वह नर के मर्मान तक कठोर आलिंगन पाश की भूखी है, इसलिए वह अपने प्रेमी से करबद्ध याचना करती है, पर मैं बाधक नहीं, जहाँ भी रहो भूमि या नभने वक्षस्थल पर इसी भांति मेरा कपोल रहने दो, कसे रहो बस इसी भांति उर्पीड़क आलिंगन में और जलाते रहो अधर पुट को कठोर चुंबन में। फिर पुरुरवा का विराग से ध्यान मोड़ने के लिए उद्दीप्त रूप में रात्रि का उल्लेख करती है। इस प्रकार पार्थिव एवं आत्मिक प्रेम में काफ़ी देर तक संघर्ष चलता रहता है। पुरुरवा के मन में एक और देवत्व की ऊंची ऊंची कल्पनाएं, दूसरी ओर उफनता हुए रक्त की अप्रतिम पुकार और पग पग घेरने वाली ठोस वास्तविकता के अभेद्य चट्टाने जो नहीं मानती, जो पिघलना नहीं जानती, उठती हैं। वह हवा और पत्थर के दो छोरों के बीच झटके खाता है और झटका खाकर कभी इस ओर और कभी उस ओर मुड़ जाता है, कभी प्रेम कभी संन्यास। और संन्यास प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, न प्रेम संन्यास को, क्योंकि प्रेम प्रकृति और परमेश्वर संन्यास है। और मनुष्य को सिखलाया गया है कि एक ही व्यक्ति परमेश्वर और प्रकृति दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता। उर्वशी पूछती है, क्या ईश्वर और प्रकृति दो हैं? क्या ईश्वर प्रकृति का प्रतिबल है, उसका प्रतियोगी है? क्या दोनों एक साथ नहीं चल सकते? क्या प्रकृति ईश्वर का शत्रु बनकर उत्पन्न हुई है, अथवा क्या ईश्वर ही प्रकृति से रुष्ट है? काफ़ी विस्तार से उर्वशी इन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न करती है, तथा पूर्वा के चित्त में प्रकृति और संन्यास में अभेद स्थापित करने का प्रयत्न करती है। उसका विचार है कि परम ज्योति त्रिलोक के स्थूल और सूक्ष्म दोनों तत्वों में विद्यमान है, अतः मनुष्य कर्म करते हुए भी उसको प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार दोनों में आवेशित उद्गारों का यह क्रम काफ़ी देर तक चलता रहता है, लेकिन फिर भी पूर्वा के लिए उर्वशी और उसके विचार रहस्यमय बने रहते हैं। उसे लगता है कि उर्वशी से उसका जन्म जन्मांतर का संबंध है। वे कहते हैं, आगे तुम जहाँ जहाँ जाओगी साथ चलूँगा मैं सुगंध से खींचे हुए मधुकर सा। प्रेमालाप के इन मधुर क्षणों में देखते देखते एक वर्ष व्यतीत हो जाता है। यह वर्ष कैसे कट गया, जैसे अभी दो पल ही बीते हैं। पूर्वा यज्ञ हेतु राजभवन जाने के लिए तत्पर हैं, अतः अनिश्चित काल के लिए युगल प्रेमी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। चतुर्थ अंक। इस अंक में चेवम सुकन्या के आश्रम में पूर्वा उर्वशी के पुत्र आयु का पालन पोषण होता हुआ दिखाया गया है। आयु का जन्म तब हुआ था जब उसके पिता उसकी माँ से अलग रहकर यज्ञ कर रहे थे। उर्वशी को ऋषि भरत का श्राप था कि तुझे पति और पुत्र दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। श्राप का कारण यह था कि एक बार देवलोक में उर्वशी पूर्वा के प्रेम में ध्यान अवस्थित थी। इसी बीच भरत ऋषि भिक्षा के लिए उर्वशी के द्वार पर आए। भरत के बार बार पुकारने पर भी वह ध्यान समाधि से अलग हटकर उनके आदर सम्मान को नहीं उठी। क्रोध में आकर भरत ने श्राप दिया कि हे उर्वशी, तू जिसके ध्यान में इतनी डूबी हुई है, तुझे मेरे आगमन का भी ध्यान नहीं है, तो जा, तू उसी के लिए मर्त्यलोक में अपने प्रेमी के साथ प्रेम क्रीड़ा करके धरती के प्रेम की पीड़ा से, मगर ध्यान रख, तुझे प्रेमी तथा पुत्र में से एक का ही सुख उपलब्ध हो सकता है। यह सुख भी तू केवल तब तक पा सकेगी जब तक तेरे प्रियतम तुम दोनों के परस्पर संयोग से जनित पुत्र को नहीं देखेंगे। जिस दिन के पुत्र के दर्शन कर लेंगे, उसी क्षण तुझे अपनी पति तथा पुत्र दोनों को छोड़कर इंद्रलोक में पुनः आ जाना पड़ेगा। इसलिए पुत्रोत्पत्ति का समाचार पति को नहीं दिया था और उसे च्यवनाश्रम में रख छोड़ा था। च्यवन ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे। एक बार वे नर्मदा तट पर घोर तप करते हुए बहुत दिनों तक समाधिस्थ रहे। इनके शरीर को दीमकों ने ढक लिया, केवल आंखें चमकती रहीं। उनके इस आश्रम में एक बार राजा शरयाती की कन्या सुकन्या पहुंची और इनकी आंखों को जुगनू समझकर कौतूहल से ही मुनिवर की पलकें खींच ली। ऋषि उसके इस व्यवहार से क्रुद्ध हो गए। उनके क्रोध को देखकर सुकन्या तनिक भी नहीं हिली और प्रायश्चित करती हुई आंखें झुकाकर खड़ी रही। सुकन्या का सौम्य मुख देखकर ऋषि का क्रोध हवा हो गया। उन्होंने समझा कि सुकन्या को परब्रह्म ने प्रसन्न होकर सिद्धि के रूप में मेरे पास भेजा है। वे सुकन्या से जीवन संगनी बनने की याचना करने लगे। सुकन्या ने ऋषि के पवित्र प्रेम से प्रभावित होकर उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। इस प्रसंग से सुकन्या के सुख से तथा कथित प्रेम संन्यास का समन्वय दिखाया गया है। संन्यासी होते हुए भी जब च्यवन सुकन्या को अपने भुजा पाश में बद्ध करने के लिए लालायित होते हैं, तब हमें यहाँ प्रकृति और संन्यास का अन्योन्याश्रित संबंध दृष्टिगत होता है। सुकन्या को जब उर्वशी की सखी चित्रलेखा से उर्वशी के श्राप का ज्ञान होता है तो बड़ी चिंतित होती है। वह उर्वशी से कहती है कि भरत ने बड़ा भयंकर श्राप दिया है, क्योंकि कौन भामिनी है जो अंगज पुत्र और प्रियतम किसी एक को लेकर सुख से आयु बिता सकती है? कौन पुरंधरी तत सकती है पति के लिए तनय को? कौन सती सुख के निमित्त स्वामी को त्याग सकेगी? इस प्रकार चित्रलेखा सुकन्या उर्वशी एवं उर्वशी चित्रलेखा के बीच भरत के शाप, मातृत्व तथा शाप की कठोरता के विषय में काफ़ी संवाद होता है। उर्वशी इस बात को स्वीकार करती है कि माता वह नहीं है जो पुत्र को जन्म देती है, अपितु असली माता मायने में माता वही है जो छाती से लगाकर बच्चे को पालन पोषण करती है। अतः आयु की माता उर्वशी नहीं सुकन्या ही है, क्योंकि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा है। पुरुर्वा के पास जाने से पूर्व सुकन्या उर्वशी से आयु के भविष्य के बारे में पूछती है। उर्वशी अपने स्वार्थ को पीछे हटाकर सुकन्या को यह पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है कि जब तुम उचित समझो तब आयु को उसके पिता के पास भेज देना। मेरे ऊपर तो जो पहाड़ टूटेगा उसे एक न एक दिन तो झेलना ही है, क्योंकि अपने पुत्र के सुवर्णमय भविष्य को मैं अपने सुख के लिए गहन गर्त में नहीं डाल सकती। सुकन्या उर्वशी को धीरज बंधाते हुए कहती है कि हे सखी, तुम प्रियतम के पास रहकर आयु की चिंता मत करना, यह मेरी आंखों का तारा है। इस आश्रम में मैं बच्चे को किसी भी प्रकार भी तुम्हारा अभाव नहीं होने दूंगी। शैशवावस्था में यह पशु पक्षियों के साथ आनंदपूर्वक क्रीड़ा करेगा, बड़ा होकर गऊओं को चराने जाएगा, यज्ञ वेदी पर बैठकर मंत्रादि का उच्चारण करके पंडित हो जाएगा। अतः शस्त्र शास्त्र निष्णात अंग से बलि विभाषित मन से जब अपना यह आयु पूर्ण कैशोर प्राप्त कर लेगा, पहुंचा दूंगी स्वयं इसे ले जाकर राजभवन में। तब तक जापी उष पान कर तू मृणमयी महिका, चिंता रहित अशंक, आयु को कोई त्रास नहीं। इस प्रकार आयु की तरफ से निश्चिंत होकर उर्वशी प्रिया के आलिंगन में बंधने के लिए राजभवन में चली जाती है। पंचम अंक। उर्वशी राजा पुरुर्वा के पास चली जाती है। यहाँ आए हुए उसे 16 वर्ष हो गए। एक रात राजा को एक विचित्र स्वप्न आता है। पुरुर्वा इस स्वप्न को देखकर बड़े व्यग्र हो उठते हैं। राज दरबार लगाकर इसे अपना महामात्य तथा राज ज्योतिषी विश्वमना के सामने कहते हैं। स्वप्न यूं था, प्रतिष्ठानपुर में काफ़ी शोर मचा हुआ है। पुरवासी कहीं से वटवृक्ष का नया पौधा लाए हैं और उसे कच्चे दूध से पूज रहे हैं। मैं भी दुग्ध कलश लेकर उसकी अर्चना हेतु जाता हूँ, मगर कोई भी नगर निवासी मेरी तरफ नहीं देखता। निराशा से भरकर मैं हाथी पर बैठकर प्रतिष्ठानपुर से बाहर किसी जंगल में चला जाता हूँ। वन में हाथी से उतरकर जब मैं इधर उधर देखता हूँ तो इसी बीच हाथी लोप हो जाता है। निर्जन वन में भटकता हुआ मैं च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुँच जाता हूँ। वहाँ मैंने एक ऋषि कुमार को देखा। उसका व्यक्तित्व तो बड़ा भव्य था। उसे अपने अंक में समेट लेने को मैं व्याकुल हो उठा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पकड़ने के लिए अपने कदम बढ़ाए वैसे ही वह न जाने किस अंधकार में समा गया। फिर मुझे हर लता कुंज में मेरी परम प्रियतमा उर्वशी का मुख दिखाई देने लगा, मगर जिस तरफ भी स्पर्श करने के लिए बढ़ता था उसी तरफ वह कुसुम आनंद पुष्प पत्तों की हरियाली में छिप जाता था। इस प्रकार चकित विस्मित और भयभीत होकर मैं अवनीतल को छोड़कर ऊर्ध्व गगन पर पहुंच जाता हूँ और प्रातः आँख खुलने तक जलद खंड सा तैरता रहता हूँ। पास में बैठी उर्वशी स्वप्न को सुनकर असंज्ञ हो जाती है, क्योंकि उसके समक्ष संपूर्ण पुरावृत्त चित्रपट के समान आंखों के सामने घूमता हुआ दिखाई देता है। ज्योतिषी विश्वमना अंक गणना करने के पश्चात राजा को फलादेश देते हैं कि मेरी गणना के अनुसार आज संध्या तक आप प्रव्रजित हो जाएंगे। अपने वीर तनय को राजपाट धनधाम सौंप, अपना किरीट पहनाकर। फलादेश देने पर विश्वमना स्वयं चकित हैं कि जब राजा के कोई पुत्र ही नहीं है तो संध्या तक कौन राजा बनेगा और राजा पुरुर्वा कैसे प्रव्रजित हो जाएंगे। इसी बीच सुकन्या आयु को लेकर दरबार में उपस्थित हो जाती है और संपूर्ण रहस्य का उद्घाटन कर देती है। शापवश उर्वशी धरती को छोड़ सुरपुर में चली जाती है। पुरुर्वा उर्वशी को अपने पास न पाकर बेचैन हो उठता है। सुकन्या भरत शाप की घटना बताकर राजा को शांत करने का प्रयत्न करती है, मगर पुरुर्वा का चित्त अशांत हो जाता है। वह देवलोक को भस्मीभूत करने के लिए अपने स्यंदन को सज्जित करने की आज्ञा देता है। राजा के इस भयंकर रौद्र रूप को शांत करने के लिए भविष्यवाणी होती है। उसे आत्मज्ञान होता है कि देवता मनुष्य का श्रेष्ठ रूप है, तो क्या तुम शैतान प्रवृत्ति के द्वारा अपनी ही श्रेष्ठ प्रवृत्ति का हनन करना चाहते हो। धीरे धीरे पुरुर्वा का चित्त प्रतिक्रिया की भावना में शांत हो जाता है, मगर उर्वशी के बिना इस राजभवन में अपने आप को रखने में असमर्थ देखकर आयु के मस्तक पर किरीट रखकर तत्क्षण वनों में चला जाता है। राजभवन में यह सब कुछ देखते देखते ही संपूर्ण हो गया। जब पुरुर्वा की रानी औषी नदी को इस संपूर्ण घटना का पता चलता है तो स्तंभित हो जाती है। पति का बिना किसी पूर्व सूचना के सदा के लिए चला जाना उसे बहुत अखरता है, मगर नारी की विवशता को देखकर वह बेचारी शांत हो जाती है और आई को ही अपने अंक से लगाकर धन्य हो जाती है।